नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। श्री मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय को उनके निरंतर समर्थन की सराहना की और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली का आह्वान किया। श्री मोदी ने कुवैत के शहजादे शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। श्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बातचीत में भी पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। ईरान और संयुक्त इसराइल अमरीकी बलों द्वारा नए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। ताजा समाचारों के अनुसार इसराइल वर्तमान में तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर एक साथ लक्षित हमले कर रहा है। इसराइल रक्षा बलों ने कहा कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में अग्रिम रक्षा रणनीति के अंतर्गत सीमा क्षेत्र के निकट कई स्थानों पर तैनात हैं। इसराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्ला ने ईरानी शासन की ओर से इसराइल पर हमला करने का विकल्प चुना। इसके अलावा अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने लगातार अभियानों के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों और सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है। दूसरी ओर ईरानी सरकार मीडिया ने बताया कि बहरीन में अमरीका की वायुसेना के एक अड्डे पर स्थित कमांड भवन नष्ट हो गया है। दुबई में अमरीकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमले से आग लगने की खबर है। इससे पहले सऊदी अरब के रियाद स्थित अमरीकी दूतावास पर भी तेहरान से दो ड्रोन हमले हुए थे। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने नवीनतम उपग्रह चित्रों की समीक्षा के बाद नतांज स्थित ईरान के परमाणु संयंत्र में संरचनात्मक क्षति की पुष्टि की है। वहीं हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद इराक ने एक प्रमुख तेल क्षेत्र में उत्पादन कम कर दिया है। इस बीच अमरीका ने मध्य पूर्व में अपने दो दूतावास बंद कर दिए हैं और क्षेत्र भर में हमलों के जारी रहने के कारण कई अन्य देशों में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के दौरान सहयोगी देशों की संपत्तियों की सुरक्षा में मदद के लिए फ्रांस के परमाणु संचालित विमानवाहक पोत को बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसराइल सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद ईरानी शासन के भीतर से ही कोई व्यक्ति सत्ता संभालने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि निर्वासित शाह के पुत्र रजा पहलवी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर उनके प्रशासन ने गहराई से विचार किया हो। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने की धमकी दी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के प्रति स्पेन के समर्थन की कमी और नाटो में अपना खर्च बढ़ाने के स्पेन के विरोध का हवाला देते हुए उन्होंने ये चेतावनी दी। भारत ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का आह्वान दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस संघर्ष के शीघ्र समाप्ति के पक्ष में है। उन्होंने दुर्भाग्य से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग से उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों से अपार अवसर खुले हैं। श्री मोदी बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे जिसका विषय था आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पश्चिम एशियाई क्षेत्र ने 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं के संबंध में गुरुवार तक स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कल बर्मिंघम में शुरू हुई। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी को हराया। सेन अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं जहां उनका मुकाबला हांगकांग चीन के एनजिक लॉन्ग एंगस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।